एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की, आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला ईशु तू है निराला, ईशु तू है निराला।
सर्मन 24 द वॉइस थ्रो हिज स्टार।
अब समय है
बुद्धिमान
परमेश्वर का वचन देखे सुनने का।
नमस्कार श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है बुद्धिमान उसके तारे देखे। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम सबों के संग हो, हमें आशीष दे, हमारे मन हृदयों को खोल दे कि हम तेरे वचन को समझने सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उनके मन हृदयों को खोल दे और तेरे आत्मा के द्वारा उन्हें आशीषित कर वे तेरे वचन को समझने सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि हम तेरा वचन को तेरे इच्छा के अनुसार बतलाने सकूं, जिससे तेरा महिमा हो। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हेरोदेस राजा रोमी साम्राज्य में यहूदिया में राज्य कर रहा था। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। पूर्व देश के वे ज्योतिषी लोग दार्शनिक थे। वे लोग बहुत ही बड़े और प्रभावशाली समाज से संबंधित थे, जिसमें दूसरों की तुलना में अधिक विद्वान, धनवान और बुद्धिमान लोग पाए जाते थे। इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे थे जो अपनी विश्वसनीयता को दूसरों पर थोपते थे, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो सही थे तथा प्रकृति के बदलते संकेतों का अध्ययन करते थे, जिन्हें उनके ज्ञान और ईमानदारी के लिए सम्मानित भी किया गया था। मूर्ति पूजकों के अंधकारमय समय में भी सदा ही परमेश्वर का प्रकाश चमकता रहा। जिस प्रकार से ये विद्वान लोग आकाश के तारों का अध्ययन किए थे और मार्ग पर हुए प्रकाश के भेद को जानना चाहे, उन्होंने उसमें सृष्टिकर्ता की महिमा को देखा। सही ज्ञान को जानने के लिए उन्होंने इब्रानी धर्मशास्त्र में ढूंढा। उनके अपने देश में भविष्यवाणियों का खजाना भरा पड़ा था, जिसमें ईश्वरीय शिक्षक के आने के लिए पहले से ही बता दिया गया था। इन विद्वानों में एक नाम बिलाम का भी था। यद्यपि पहले कभी वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता हुआ करता था, पवित्र आत्मा द्वारा उभारे जाकर उसने मसीह के आने और इसराइलियों की सफलता के विषय में भविष्यवाणी कर दिया था, और उसकी भविष्यवाणियां परंपरा के अनुसार एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक एक दूसरे को पहुंचाती जाती रही। परंतु पुराने नियम में मुक्तिदाता के आगमन को बड़ी सफाई के साथ प्रकट कर दिया गया था। विद्वानों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ समझ लिया कि उसका आना बहुत समीप है और पूरा संसार परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। उस रात ज्योतिषियों ने आकाश में एक रहस्यमय प्रकाश को देखा, जिसने बैतलहम की पहाड़ियों को परमेश्वर की महिमा से जगमगा दिया था। जब वह प्रकाश कुछ मध्यम पड़ा, तो उन्हें एक चमकीला तारा दिखाई दिया जो आकाश में ठहरा हुआ था। ना तो वह कोई उपग्रह था और ना ही कोई सामान्य तारा था। इस अद्भुत दृश्य ने उनकी चाह को और बढ़ा दिया। वह तारा और कुछ नहीं बल्कि चमचमाते हुए स्वर्गदूतों का एक झुंड था। परंतु इस बात से वे ज्योतिषी लोग अनभिज्ञ थे, फिर भी वे प्रभावित हुए कि यह तारा उनके लिए कोई विशेष बात का द्योतक है। उन्होंने याजकों और दार्शनियों से सलाह मशविरा किया और प्राचीन अभिलेखों में खोजबीन किया। बिलाम की भविष्यवाणी में कहा गया था, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा, गिनती 24:17। क्या यह अनजान तारा उस प्रतिज्ञा किए हुए का संदेश वाहक तो नहीं है? ज्योतिषियों ने स्वर्गीय सत्य के प्रकाश का स्वागत किया। अब उन पर प्रकाश की किरणें और चमकने लगी। स्वपन द्वारा उन्हें निर्देश मिला कि वे नए जन्मे राजकुमार की खोज में जाएं। जैसे विश्वास द्वारा परमेश्वर की बुलाहट पर इब्राहिम चल पड़ा था, यद्यपि यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, इब्रानियों 11:8। जैसे विश्वास द्वारा इसराइली बादलों के खंभे का पीछा करते हुए प्रतिज्ञा किए हुए देश में गए, इसी प्रकार से ये अन्य जाति के लोग प्रतिज्ञा किए हुए मुक्तिदाता को खोजने चल पड़े। पूर्वी देश बहुमूल्य धन संपत्ति से परिपूर्ण है और ये ज्योतिषी लोग भी खाली हाथ नहीं निकले थे। यह एक परंपरा चली आ रही थी कि राजकुमारों अथवा दूसरे उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए जाते समय उनके सम्मान में भेंट ले जाना आवश्यक होता था और वह बहुमूल्य उपहार जिसे वह देश देने के योग्य था उसे भेंट देने के लिए वे लोग लेकर चले, जिसके द्वारा पृथ्वी के सारे परिवार आशीषित होने वाले थे। तारे को देखते रहने के कारण उन्हें रात में ही यात्रा करनी थी, परंतु ये यात्री परंपरागत वचनों को दोहराते और जिसे ढूंढने निकले थे उसके विषय में लिखी भविष्यवाणियों का उच्चारण करते हुए घंटों खुशी में समय बिताते रहते। मार्ग में विश्राम के लिए प्रत्येक पड़ाव पर उन्होंने भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और उनका विश्वास और भी दृढ़ होता गया कि ईश्वरीय शक्ति उनकी अगुवाई कर रहा है। जबकि बाहरी रूप से वह तारा उनके सामने एक चिन्ह था, परंतु भीतरी रूप से भी वे पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहे थे जो उनके हृदयों को प्रभावित कर रहा था और उनकी आशा को उत्प्रेरित कर रहा था। यद्यपि यह एक लंबी यात्रा थी, परंतु उनके लिए एक सुखद यात्रा भी थी। वे इज़राइल के देश में पहुंचे और जैतून पर्वत से नीचे की ओर उतरने लगे। सामने ही जब उन्हें यरूशलेम दिखाई दिया तो देखो जो तारा उस थकान भरी यात्रा में उनका मार्गदर्शन कर रहा था वह मंदिर के ऊपर आकर ठहर गया और थोड़े क्षणों के लिए उनकी आंखों से ओझल हो गया। उत्सुकता के साथ उनका कदम आगे बढ़ते रहे। विश्वास के द्वारा मसीह के जन्म की प्रसन्नता को याद करते जो प्रत्येक के जवान पर था, परंतु उनकी सारी पूछताछ व्यर्थ गई। पवित्र नगर में प्रवेश किए और मंदिर में उन्हें शरण मिल गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे नए जन्मे राजा का ज्ञान हो। उनके प्रश्नों को सुनकर किसी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं दी। यह उनका आश्चर्य या भय नहीं था, बल्कि सरासर उनकी उपेक्षा थी। याजक लोग परंपरा को निभा रहे थे। वे लोग अपने धर्म और अपनी ईश्वर भक्ति की प्रशंसा बढ़ चढ़कर बखानते थे, परंतु यूनानियों और रोमियों को मूर्ति पूजक और दूसरों से अधिक पापी कहकर उनकी निंदा करते थे। ये ज्योतिषी लोग मूर्ति पूजक नहीं थे और परमेश्वर की दृष्टि में उनका स्तर इन नामधारी इसराइली आराधकों से ऊंचा था। फिर भी यहूदी लोग उन्हें मूर्ति पूजक की संज्ञा देते थे। यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र के अभिभावक के रूप में होते हुए भी उन ज्योतिषियों के प्रश्नों पर उन्हें कोई सहानुभूति नहीं हुई। ज्योतिषियों के आगमन का समाचार बहुत शीघ्रता से पूरे यरूशलेम में फैल गया। उनके इस अनोखे संदेश ने लोगों के बीच उत्तेजना उत्पन्न कर दिया और यह बढ़कर राजा हेरोदेस के राजमहल तक पहुंच गया। कपटी आदोमी राजा इस संभावित प्रतिद्वंदी राजा के समाचार को सुनकर उद्वेलित हो उठा। इस सिंहासन तक पहुंचने के लिए अनगिनत लोगों के लहू से उसके हाथ रंगे हुए थे। एक विदेशी शासक होने के कारण वे लोग उसे घृणा करते थे जिन पर वह शासन कर रहा था। उसका रक्षक केवल रोम की कृपा थी, परंतु इस संभावित नए राजकुमार का दावा तो बहुत बड़ा था। वह राज करने के लिए ही जन्मा था। हेरोदेस शंका करने लगा कि याजकों और परदेशियों ने मिलकर यह एक षड्यंत्र रचा है ताकि लोगों में उपद्रव भड़काकर उसे सिंहासन से उतरवा दे। अपने अविश्वास को उसने प्रकट नहीं होने दिया, परंतु अपने मन में यह ठान लिया कि उनकी इस योजना को निष्फल करने के लिए वह उनसे भी बढ़कर षड्यंत्र रचेगा। मुख्य याजक और लेखाकार को राज्यसभा में बुलवाया तथा उनसे प्रसन्न किया कि उनका पवित्र शास्त्र मसीह के जन्म स्थान के विषय में क्या कहता है। राज सिंहासन पर विराजने वाले धूर्त राजा के इस प्रश्न ने, जो कि एक अनजान परदेशियों द्वारा पूछा गया था, यहूदी शिक्षकों के गर्व को धक्का पहुंचाया। इस विरोधाभास के होते हुए जब उन्होंने भविष्यवाणियों के लेखों को खोला तो उनका मन डास से भरा हुआ था। राजा ने अनुमान लगाया कि वे लोग इस भेद को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज के प्रश्न का निरादर करने का साहस वे नहीं कर सकते थे। राजा ने आदेश दिया कि गहराई से ढूंढो और अपने संभावित राजा के जन्म स्थान का पता बताओ। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुपके से निमंत्रित किया। उसके हृदय में भय और क्रोध की आंधी उठ रही थी, परंतु उसने बाहर से अपने आप को शांत दिखाया और इस परदेशियों का सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने उनसे पूछा कि ठीक किस समय उन्होंने तारे को देखा था और स्वीकारा कि मसीह के जन्म के संदेश से उसे बहुत प्रसन्नता हुई है। उसने अपने इन अतिथियों से विनती की कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। ऐसा कहकर राजा ने उन परदेशी ज्योतिषियों को विदा किया और वे अपने राह बैतलहम को चले गए। यरूशलेम के याजक और बड़े बुजुर्ग लोग यीशु के जन्म लेने के विषय में अनभिज्ञ नहीं थे, जैसा कि वे दिखा रहे थे। स्वर्गदूतों का गरेड़ियों से मिलने का समाचार यरूशलेम तक पहुंच चुका था, परंतु रबी लोगों ने इसे कोई महत्व नहीं दिया। वे स्वयं यीशु का दर्शन करने जा सकते थे, यहाँ तक कि जन्म स्थान तक पहुँचाने में परदेशी ज्योतिषियों का मार्ग दर्शन कर सकते थे, परंतु इसके बदले ज्योतिषी लोग उनके पास आए और मसीह के जन्म के विषय में उनको ध्यान दिलाया। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? उन्होंने कहा, हमने उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उनका घमंड और डाह ने प्रकाश के द्वार को बंद कर दिया और उनका घमंड और हट धर्मिकता बढ़ती गई और मुक्तिदाता के विरुद्ध घृणा का रूप धारण कर लिया। जबकि परमेश्वर अन्य जातियों के लिए द्वार खोल रहा था, यहूदी अगुए अपने ही लिए उस द्वार को बंद कर रहे थे। ज्योतिषी लोग यरूशलेम से अकेले चले गए। जिस समय नगर द्वार को पार किया, उस समय रात की छाया पड़ने लगी थी, परंतु उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने उस तारे को फिर से देखा जिसने बैतलहम की ओर ले जाने में उनका निर्देशन किया। उन ज्योतिषियों को उस प्रकार की दीनता वाला संदेश नहीं मिला था जिस प्रकार का सुसमाचार गलेरियों को दिया गया था। थकान भरी लंबी यात्रा और यहूदियों के अगुओं के तटस्थ व्यवहार से वे निराश हो चुके थे और जिस विश्वास के साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया था, यरूशलेम से बाहर आते समय उनके उस विश्वास में कमी आ गई थी। बैतलहम में कहीं पर भी नए जन्मे राजा के राजकीय अंग रक्षकों को नहीं देखा। संसार के प्रसिद्ध महानुभवों में से वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था। यीशु चरनी में झूला झूल रहा था। केवल उसके अनपढ़ किसान माता पिता ही उसके रक्षक अंगरक्षक थे। क्या यह वही हो सकता है जिसके विषय में लिखा गया था कि वह याकूब के गोत्र से और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले और उसका उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। उस दीनहीन बच्चे यीशु के भीतर उन्होंने ईश्वरत्व की उपस्थिति को पहचान लिया। उन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उसे अपना हृदय समर्पित कर दिया और अपनी लाई हुई भेंटे सोना लोहबान और गंधरस को उसे अर्पित किया। परमेश्वर पूर्व के इन ज्योतिषियों को बुद्धि दिया। परमेश्वर इन बुद्धिमानों को निर्देश दिया कि वे जाएं और नए जन्मे राजा का दर्शन करें। वे परमेश्वर का निर्देश सुनकर यीशु को देखने गए और उसे पाकर बहुत खुश हुए। उसे देखकर वे बहुत आशीषित हुए। परमेश्वर अपना रोशनी, अपना प्रकाश सब जातियों में देता है और सबको बुलाता है कि वह उसके उद्धार का रास्ता को पहचाने, उसके बेटा यीशु उद्धारकर्ता के पास आए और उसे ग्रहण करे। उनके लिए कितना ही खुशी का अनुभव था, कितना ही वे आशीषित हुए थे। आज भी हमें चाहता है परमेश्वर कि हम यीशु मुक्तिदाता के पास आए, उसे पहचाने और उसे अपना उद्धारकर्ता अपनाएं, कि हम अपने जीवन में आशीषित हो और आगे बढ़े और आगे अनंत जीवन पाएं। क्या आप भी यीशु को ढूंढने और पाने के लिए अपना राह चलने चाहते हैं? परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, यदि हम उसे दिल से ढूंढे, हृदय से ढूंढे, तो वह हमें जल्दी मिलेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं और फिर से तेरे पास आते हैं। तेरे इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि तूने हमारे लिए उद्धार का रास्ता बनाया। तूने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि वह हमें रास्ता दिखाए, वे हमें उद्धार दे। हम उसके पास आए, उसको जाने, उसको पहचाने और तेरे राज में होने पाए पिता। इसके लिए हमें बुद्धि दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई दे। मेरे हरेक श्रोताओं को तो आशीष दे पिता, और हमें तेरे नजदीक ला। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।